ओम शांति। 5 अप्रैल 1981। तो यह विशेष अटेंशन रखो, इसी में ही अलबेलापन आ जाता है। मैं ठीक हूं, ठीक तो हो, लेकिन जो ठीक रह सकता है वो स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है। अगर मानो दूसरे को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है। फिर भी सबकी आशीर्वाद तो मिल जाएगी, ये आशीर्वाद भी तो फायदा हुआ ना। क्यों, क्या मैं नहीं चाहूं, यह क्यों, यह ऐसा होगा वैसा होगा, इसको फुल स्टॉप लगाओ। अब यह विशेषता चारों ओर लाइट हाउस के मुआफिक फैलाओ। इसको कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है? तो यह विशेष अटेंशन रखो, इसी में ही अलबेलापन आ जाता है। मैं ठीक हूँ, ठीक तो हो, लेकिन जो ठीक रह सकता है वो स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है। अगर मानो दूसरे को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है। फिर भी सबकी आशीर्वाद तो मिल जाएगी, यह आशीर्वाद भी तो फायदा हुआ ना। क्या क्यों मैं नहीं जाऊं, यह क्या क्यों ऐसे होगा वैसे होगा, इसको फुल स्टॉप लगाओ। अब यह विशेषता, कौन सी विशेषता? यह विशेषता लाइट हाउस के मौफिक फैलाओ। इसको कहा जाता है, एक ने कहा, दूसरे ने माना, अर्थात अनेकों को सुख देने के निमित्त। इसमें यह नहीं सोचो कि मैं कोई नीचा हो गया, नहीं नीचे हो गया, सॉरी, गलती की, तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूं, यह नहीं सोचो, लेकिन सेवा के लिए परिवर्तन कर रहा हूं। सेवा के लिए स्थूल में भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया तो हर्जा ही क्या। इसमें क्या बनो, निर्माण बनो, इसमें क्या बनो, नंबर वन बनो, इसमें क्या बनो, हे अर्जुन बनो, इससे वातावरण बनेगा। 1 से 2, 2 से 3, अगर कोई गलती है और मान ली, यह कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो गई और मान लिया, ये बड़ी बात है, ये भी तो बड़ी बात है। अगर बड़ी बात नहीं होती तो सब शायद करते। अगर कोई गलती है और मान ली तो यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गलती नहीं है और लोक संग्रह अर्थ करना पड़ता है, यह है महानता। इसमें अगर कोई समझाता भी है कि इसने यह किया अर्थात नीचे हो गया, तो दूसरों के समझने से कुछ नहीं होता। बाप की लिस्ट में तो नंबर आगे है। इसको दबाना नहीं कहा जाता, यह भी ब्राह्मणों की भाषा होती है ना। कौन सी भाषा होती है? कहां तक दबेंगे, कहां तक मरेंगे, कब तक सहन करेंगे? अगर यहां दबेंगे भी तो अनेक आपके पांव दबाएंगे, पता नहीं कब आएगा। इंतजार में है कब से। अभी तक आया नहीं, कब आएगा पाव दबाने वाला? ये मुरली याद है ना, कर्म का आधार धर्म, संडे की मुरली अभी भी 1 साल पहले चली होगी। ये बताना, ये दबाना नहीं है, लेकिन अनेकों के लिए पूज्य बनना है, महान बनना है। 5 अप्रैल 1981। तो क्या सुना? एक अटेंशन रखो, कौन सा? इसमें अलबेलापन आ जाता है। एक तो मैं ठीक हूं, ठीक तो हूं, लेकिन जो ठीक रह सकता है वो स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है। तो पहली जो धारणा है वो है मोल्ड होना, मोल्डेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। मोल्ड अर्थात, मोल्ड किसको कहते हैं? मोल्ड अर्थात साचा, साचा होता है ना, साचा एज अ नाउन, मोल्ड अर्थात वो साचे को मोल्ड कहा जाता है, मोल्ड अर्थात फंगस भी होता है परंतु मोल्ड का एक अर्थ होता है वो साचा। फिर मोल्ड होना अर्थात जैसे साचे में कोई भी चीज कैसी हो जाती है, ढल जाती है, तो वो उस तरह ढल जाना, उसका शेप ले लेना। जैसे पानी जो है जिस भी पात्र में डालेंगे उसका वो रूप ले लेता, आकार ले लेता है। तो पानी का जो नेचर है मोल्डेबल नेचर है, उसका दूसरे अर्थों में कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। तो पहली जो धारणा है वो कौन सी है, मोल्डेबल नेचर। अगर मानो दूसरे को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है, मोल्ड करना अर्थात स्वयं को चेंज करना, स्वयं को फ्लेक्सिबल रखना, जरूरत अनुसार समय अनुसार बदलना, अर्थात एकदम क्या कहते हैं उसको, ये नहीं रहना अकड़े हुए कहो या फिर अपने स्टिफ, अपने इसमें एकदम कठोर स्वभाव में बिल्कुल चेंज नहीं होना, बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, ये है तो बस ये ऐसा ही होना चाहिए। फ्लेक्सिबल, बाबा ने कहा अगर मानो उदाहरण ये है, मेरा कोई चलन, मेरी कोई चलन से किसी को संकल्प उत्पन्न होता है, हम कुछ गलत कर रहे हैं और उससे किसी को संकल्प उत्पन्न होता है तो यहाँ स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है, फिर भी सबकी आशीर्वाद तो मिल जाएगी, ये आशीर्वाद भी तो फायदा हुआ ना, क्या क्यों मैं नहीं जाऊं, यह क्यों, यह ऐसा होगा वैसा होगा, इसको फुल स्टॉप लगा। अब यह विशेषता चारों ओर लाइट हाउस के मुआफिक फैलाओ, ये विशेषता को फैलाओ, कितनी बड़ी बात है ये। इसको कहा जाता है एक ने कह दिया और दूसरे ने तुरंत मान लिया, बिना ये सोच के कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, इससे तो मैं थोड़ा नीचे हो गया, लोगों ने यह समझ लिया कि मैं ही गलत हूं, अर्थात अनेकों को सुख देने के निमित्त। इसमें यह नहीं सोचो कि मैं कोई नीचे हो गया, नहीं, गलती की तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूं, यह नहीं सोचो कि मैंने गलती की इसलिए मुझे यह चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन किस लिए परिवर्तन कर रहा हूं, इतना ऊंचा संकल्प है ये, सेवा के लिए मैं परिवर्तन कर रहा हूं, इस संगठन में अपने मैं को नीचे करना। सेवा के लिए स्थूल में भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना, सेवा में स्थूल मेहनत करनी पड़ती है, ये सूक्ष्म मेहनत है, ये सबसे बड़ी मेहनत है, सबसे सूक्ष्म मेहनत। तो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए क्या करने के लिए, श्रेष्ठ, उतनी महान यातनाओं को भी सहन करना पड़ेगा, जितना महान लक्ष्य है उतना महान त्याग, उतनी महान धारणाएं होनी होगी। तो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया तो हर्जा ही क्या है, इसमें क्या बनो, इनिशिएटिव लेना इसमें, इसमें हे अर्जुन, इससे क्या होगा, वातावरण बनेगा, एक से दो, दो से तीन, अगर कोई गलती है और मान ली तो यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गलती नहीं है और लोक संग्रह अर्थ करना पड़ता है, लोक संग्रह अर्थात, लोक संग्रह अर्थात कई बार आता है मुरलियों में, तो तो लोक संग्रह अर्थात, लोक संग्रह का सीधा सीधा अर्थ होता है सबके कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके लिए, थोड़ा ऊंची दृष्टि, लोक संग्रह ये करो, लोक संग्रह अर्थ, अर्थ करना पड़ता है, यही महानता है। तो महान बनना है या थोड़े से कदम पीछे हट रहे हैं, महान बनने की शर्तें बहुत है, अगर कोई गलती है और मान ली तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गलती नहीं है और लोक संग्रह अर्थ करना पड़ता है, यह मानता है, इसमें अगर कोई समझता भी है कि इसने यह किया अर्थात नीचे हो गया, तो दूसरों के समझने से कुछ नहीं होता है। अभी हमने गलती मान ली और सबने सोचा, बहुत सारा सोचेंगे, खाली सोचेंगे नहीं, चर्चा करेंगे, खाली चर्चा भी नहीं करेंगे और क्या करेंगे, मीडिया में फैलाएंगे उसको, सोशल मीडिया में सब जगह। कल एक हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, बीइंग अ सेलिब्रिटी इज नॉट अ केक वॉक, इट इज द एंड ऑफ द प्राइवेट लाइफ एंड स्पॉटलाइट 24/7। मतलब महान बनना या जो महान सितारे ये जो भी होते हैं वो केक वॉक नहीं है। केक वॉक मतलब बहुत आसान काम, उसको केक वॉक कहा जाता है। कोई भी कर सके ऐसा काम, उसको केक वॉक कहते हैं। वो केक वॉक नहीं है। इसमें प्राइवेट लाइफ कुछ है ही नहीं आपकी, 24 घंटे 24/7, 7 दिन 24 घंटे आप स्पॉटलाइट में हो, अर्थात सारी दुनिया देख रही है। जैसे संडे में कहा था, तुम स्टेज पर हो, बहनों से मुलाकात, टीचर से मुलाकात, तुम कहाँ हो, स्टेज पर हो, तुम्हारे सामने ऑडियंस है बहुत बड़ी, व्यूअर्स जो है वो देखने वाले बेहद के हैं, स्टेज भी बेहद का है, और वो प्राप्ति की नजर से तुम्हारे तरफ देख रही है कि हमें इनसे कुछ प्राप्ति हो जाए। तो तुम स्टेज पर हो, एक दूसरा ये जो शोकेस है बेहद का, डिस्प्ले केस, उसके तुम शो पीस हो। ये दो चीजें बाबा ने टीचर्स के लिए कही थी। तो सेंटर ही स्टेज है, मधुबन ही स्टेज है, जहां हम खड़े हैं वो स्टेज है, क्योंकि हमारा ये परिधान है और जिस परिधान में हम हैं, लोग उसी नजर से देखते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है। तो कुछ भी छुपा नहीं रह सकता है, यहां पर बहुत जल्दी सब जगह फैल जाता है। कोई भी छोटी सी चीज अगर हो गई, और वो भी मधुबन में, तो सुई भी अगर गिर जाए तो उसकी आवाज दूर दूर सेवा केंद्रों तक पहुंच जाती है, दूर दूर तक। तो वो भी होगा, अच्छी भी फैलेगी तो बुरी भी फैलेगी, फिर स्तुति भी होगी तो निंदा भी उतनी ही जोर से होगी। तो कोई गलती की तो बाबा कह रहे हैं कि लोक संग्रह अर्थ, गलती नहीं की और मानने तो की तो बात नहीं की, पर पहले कहा मानना, गलती हुई मान लिया कोई बड़ी बात नहीं, गलती हुई लोक संग्रह अर्थ करना पड़ता है, यह मानता है। इसमें अगर कोई समझता है कि इससे इसने यह किया तो अर्थात नीचे हो गया, तो दूसरों के समझने से कुछ नहीं होता, दूसरे क्या सोच रहे उससे कुछ नहीं होता। बाबा कह रहे बाप की लिस्ट में तो आगे नंबर है, जीजस के प्रसिद्ध वचन है, जो यहां सबसे आगे होगा वो मेरे राज्य में सबसे पीछे, जो यहां सबसे पीछे है वो मेरे राज्य में सबसे आगे होगा। जो मांगता है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा, और जो देता है उसे, जिसके पास है नहीं फिर भी देता है, उसको दिया जाएगा। He who is first here will be the last in my kingdom. He who is last here will be first in my kingdom. मेरे राज्य में सबसे आगे होगा वो। तो फ्लेक्सिबिलिटी, इसको दबाना नहीं कहा जाता, कितनी स्ट्रांग मुरली है। यह भी ब्राह्मणों की भाषा होती है ना, कौन सी भाषा, कब तक दबेंगे, कब तक मरेंगे, हम ही सहन करें क्या, बस सहन करना क्या हमारे लिए ही है, ये लोग तो कभी सहन ही नहीं करते। विनोद भाई, अगर यह दबेंगे भी तो, अगर यहां दबेंगे भी तो अनेक आपके पाव दबाएंगे, पता नहीं कब आएंगे ये दबाने वाले, कब से दब रहे हैं, दब रहे हैं, दब रहे हैं, इसी आश में भगवान के वचनों पर विश्वास है। यह दबाना नहीं है, लेकिन अनेकों के लिए पूज्य बनना है, महान बनना है। तो महान बनने की तैयारी है, हाँ या ना, सोचूंगा। वो महात्मा बुद्ध कहीं से जाते रहते हैं, तो एक व्यक्ति उनके पास आता है, वो कहता है कि मुझे कुछ कुछ ऐसा उपदेश दो कि मेरा जीवन परिवर्तन कर दे, मैं बहुत परेशान हूं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कुछ आपके मुख से निकल जाए, कुछ ऐसा आप बोल दो कि जिससे मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कुछ कह ही दो आप बस आज। तो वो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं अगर तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम उसको आज ही करोगे? वो कहता है आप कहो तो, वो करना नहीं करना वो तो मैं मैं करूंगा तो मैं, पर आज ही करूंगा ये तो नहीं कह सकता, परंतु हाँ मैं वो अपने पास रखूंगा और जैसे ही मतलब समय मिला टाइम मिला और आगे करूंगा ही जरूर। पर वो कहते नहीं, क्या मुझे गारंटी देते हो कि आज करोगे? वो कहते नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कह सकता। तो महात्मा बुद्ध उसे उदाहरण देते हैं कि मैं एक जगह से जा रहा था और वहां पर एक घर में आग लग गई, तो बाहर वालों ने अंदर वालों से कहा कि अरे आग लग गई, निकलो बाहर, निकलो बाहर। तो अंदर वालों ने कहा अभी नहीं, थोड़ा रुको, थोड़ी देर के बाद निकलता हूं। तो उसको क्या कहा जाएगा? जब ये एहसास होगा कि आग लगी है पूरा एहसास, तो व्यक्ति सोचेगा नहीं, किसी को पूछेगा भी नहीं, अगर पूछ रहा है मतलब मूर्ख है वो। संसार में आग लगी है और फिर पूछते हो कि इससे निकलू, अभी निकलू कि थोड़ा बाद में निकलू? करना कब करना न करना हमारे ऊपर है। आज करना, आज ही करना, अभी ही करना, या आज सोच के रखे और फिर कल करे, वो शायद कल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर सबसे पहली बात कही है बाबा ने मोल्डेबल नेचर, दूसरी बात कही है सहन करने की, तीसरी बात कही है कि गलती न हो परंतु फिर भी स्वीकार कर रहे, किस लिए? बहुत ऊंचा लक्ष्य है हमारा सेवार्थ, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से तो हम भी दे सकते हैं, परंतु उससे होगा क्या? यज्ञ में कौन सा उदाहरण हम स्थापित करेंगे? सहनशीलता का तो नहीं होगा। वो इतना सब मिला है, सब अच्छा है, थोड़ी सी कुछ गलत बात हो रही है हमारे साथ तो तुरंत हमारा चित्त कंप्लेंट से भर जाता है। ईरान में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध एक सूफी संत कभी हुआ था, बहुत पहले 11वीं 12वीं शताब्दी में, फरीदुद्दीन अत्तर। तो उस फरीदुद्दीन अत्तर, उसे अत्तर ऑफ निशापुर, अत्तर अर्थात वो सुगंध होती है ना सेंट, और वो अत्तर मतलब वो ड्रगिस्ट था, मतलब फार्मासिस्ट था। तो फरीदुद्दीन अत्तर वो हमेशा कहता था, उसके बारे में बहुत कम जानकारी है, परंतु रूमी जो हुआ है बहुत बड़ा संत, उसे अपना वो गुरु समझता था, बहुत बड़ा प्रभावित हुआ था उससे। तो फरीदुद्दीन अत्तर, अत्तर ऑफ निशापुर, निशापुर एक जगह है ईरान में, तो वो कहता था कि ए खुदा के बंदो, हे खुदा के बंदो, यदि जीवन में कुछ कड़वाहट आ जाए तो उस प्यारे से गुलाम को याद करना, यदि तुम्हारे जीवन में कुछ कड़वाहट आ जाए तो उस प्यारे गुलाम को याद करना। तो लोग पूछते थे कौन सा प्यारा गुलाम, तो वो फिर कहता था कि एक बहुत बड़ा राजा था और उसका एक गुलाम था। उस राजा ने एक दिन उस गुलाम को एक अत्यंत दुर्लभ और कभी न मिलने वाला ऐसा एक फल दिया, तो उस गुलाम ने उसको काटा और खाया। तो राजा ने कहा कैसा है? उस गुलाम ने कहा ऐसा फल तो इतना मीठा है कि मैंने आज तक कभी चखा नहीं, कभी देखा नहीं, ऐसा ये मीठा फल है। तो राजा को लगा अच्छा इतना मीठा फल है, तो राजा ने कहा कि मुझे भी थोड़ा सा दे दो। तो वो थोड़ा सा संकोच हुआ उसको देने में, फल को देने में उसने थोड़ा संकोच किया, तो राजा की इच्छा तो और ही बढ़ गई कि मुझे तो अब दो ही तुम। तो राजा को वो थोड़ा सा फल देता है, तो राजा पाता है वो तो इतना कड़वा फल है कि ऐसा कड़वा फल मैंने कभी खाया ही नहीं, ऐसे राजा कहता है। फिर तुमने क्यों कहा कि ये मीठा है? तो वो कहता है मालिक, इतने सालों से मैं आपके साथ हूं और आपने मुझे इतने तोहफे दिए हैं, आपने मुझे इतने कीमती कीमती बख्शीश दिए हैं, आपकी इतनी इनायतें, आपके इतने उपकार मुझ पर है कि क्या वो उपकार, क्या वो तोहफे इस छोटे से फल की कड़वाहट को मीठा नहीं बना देंगे? आपने मुझे इतना कुछ दिया है और इतना आज ये छोटा सा आपने कड़वा दे दिया फल, तो क्या मैं ये शिकायत करूं कि ये फल कड़वा है? क्या वो जो मिठास है वो काफी नहीं है इस फल के कड़वाहट को दूर करने में? उस परम पिता ने क्या कुछ नहीं दे दिया? मधुबन का यह स्थान, ये पालना, डबल पालना, डबल विदेशियों से मुलाकात, इतना कुछ उसने दे दिया है। जब से आए तब से इतना कुछ दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है। बाहर संसार में कितना संघर्ष है, रोटी के लिए संघर्ष है, एक टाइम के भोजन के लिए संघर्ष है। कैसे लोग भाग रहे हैं वहां पर, दिन रात चार चार घंटा ट्रेवल करते हैं, मुंबई में देखो जाकर कैसा उनका जीवन है, कैसा उनका सफर है। इतना कुछ यहाँ सब कुछ मिला है हरेक को, और उसके बाद में भी यदि थोड़ा कुछ कम मिल जाए, थोड़ी सी करवाहट, थोड़ा सा फल दे दे वो, तो हम तुरंत कहेंगे ये फल बहुत ही कड़वा है। इसके लिए वो फरीदुद्दीन अत्तर कहता था, हे खुदा के बंदो, यदि जीवन में कड़वाहट भी मिल जाए किसी से, तो उस प्यारे से गुलाम को याद करना। तो कुछ सहन करना भी पड़े तो कर लो, कुछ मानना भी पड़े तो मान लो। शायद ऐसा भी हो, क्योंकि देखने वाले सब कुछ देख रहे हैं, वो ये तो देख ही रहे हैं कि इसकी गलती नहीं है, फिर भी ये चुप है। देखने वाले वो भी देख रहे हैं कि जो आरोप लगा रहा है, हमको लगता है कि देखो हमको झूठा बताया जा रहा है, दोषी बताया जा रहा है, और सब लोग तो यही सोचेंगे कि मैं ही गलत हूं और ये व्यक्ति ही राइट है, परंतु ऐसा नहीं है। देखने वाले बहुत कुछ देख रहे हैं, देखने वाले ये भी देख रहे हैं कि गलती इतनी छोटी सी है पर इसे जितना डांटा जा रहा है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, इतने की जरूरत ही नहीं थी डांटने की, वो भी देख रहे हैं। देखने वाले, चक्षु तो सबके पास है ना, कल कहा था ना, तुम्हारा तीसरा चक्षु खत्म हो गया था, बाप ने आकर दिया है, तो तीसरा चक्षु तो सबके पास है, चाहे कुछ भी हो जाए। कल की मुरली में सबसे पावरफुल महावाक्य था एक, इस ज्ञान में सदैव हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख को महसूस करो। इस ज्ञान में सदैव हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख को महसूस करो, दुख को नहीं। चाहे दुख भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, यहां कुछ भी हो रहा है, हमको लग रहा है ये क्या हो रहा है यहां पर, परंतु जो भी हो रहा है उसको पता है। उसके पूरे यज्ञ में, केवल मधुबन में ही नहीं, एक एक सेवा केंद्र में जो भी हो रहा है, क्या उसके मालिक को पता नहीं रहेगा क्या हो रहा है? जो हम सोच रहे हैं कि मैं इसको ठीक कर लूंगा सबको। सुख को महसूस करो, ज्ञान की रिमझिम है, ज्ञान की बरसात है, ज्ञान का बाहरी मौसम है, तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो। झाड़ कहता है कि मैं, क्या कहता है झाड़? सूख गया था। झाड़ कहता है मैं सूख गया था, अब मैं फूलों का बन रहा हूं। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो, तुम एक एक त्रिकालदर्शी हो, तुम एक एक त्रिनेत्री हो, एक एक की तुम्हारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। सुख को महसूस करो, कितने सुंदर महावाक्य है, बेहद का। अशोक भाई कौन सा मौसम है ये? बेहद का, कौन सा बेहद का नहीं, बीच में कुछ है, बेहद का बाहरी मौसम है। तो फ्लेक्सिबल बनने के लिए क्या क्या करेंगे, मोल्डेबल बनने के लिए क्या क्या करेंगे, कहां पर भी एडजस्ट हो जाए। पहले तो सुनने के लिए तैयार रहेंगे, पहले तो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार रहता है, दूसरा क्या बोल रहा है, पहले तुम मेरी सुनो, बाद में तुम्हारी हम सुनेंगे। पहले तो मानो तुम रॉन्ग हो, उसके बाद आगे की बात करेंगे, तब तक बात करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। फॉर्मल एपोलॉजी, पहले तो कहो गलती हो गई, बाद में आगे की चर्चा होगी। तो मोल्डेबल बनने के लिए क्या किया जाए जीवन में? फ्लेक्सिबल, झुकना है। वो किसी ने कहा था एक जगह बहुत सुंदर बात, पानी होता है ना, पानी, पानी के नीचे घास होती है, बड़ी बड़ी घासें होती है ना, क्या कहते हैं उसको? धूप, दूब। पानी के नीचे बड़ी बड़ी घासें होती है, बड़ी दूप, क्या ब ग्रास, जो पानी के नीचे होती है। सरेंडर्ड लाइफ की तुलना उससे की गई है। वो ऐसी होती है, पानी का बहाव इधर से आता है तो इधर झुकती है, पानी का बहाव इधर आता है तो इधर झुक जाती है, पूरा इधर से इधर झुकती है, इधर से उधर, रेजिस्ट नहीं करती है किसको? लवाड़ा। तो जैसे वो पानी के अंदर बड़ी बड़ी घास होती है, इधर इधर। एक शिष्य था आश्रम में, उसको बाकी शिष्य बहुत परेशान करते थे दिन रात। जब भी ध्यान करने बैठता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। योगी बनने में तो कंपटीशन है, कोई ज्यादा योग कर ले, ज्यादा योगी बन जाए तो। कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। तो वो गुरु के पास गया, ये बहुत नया था बेचारा, अभी अभी आया था गुरुकुल में, ये शिष्य तुम्हारे आपके जो जन बिल्कुल मुझे परेशान करते, मैं क्या करूं, इनके साथ रहना बहुत मुश्किल है, बाकी सब ठीक है, इधर भोजन अच्छा है, शिक्षा अच्छा है, तुम्हारे क्लासेस लेक्चर्स जो भी है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, इनका क्या करूं? ये कुछ ना कुछ करते ही रहते तो कह रहे चल मैं तुझे बताता हूँ। वो ले जाते हैं उसको, एक झरना होता है, गिर रहा होता है, और फिर नीचे पानी के रूप में बह रहा है, नदी जैसा छोटा सा, वहां एक बहुत बड़ा बीच में पत्थर होता है। वो कहता है उस पत्थर को देखो, वो पत्थर जो है पानी से लड़ नहीं रहा है, कुछ पानी बाजू से जा रहा है, वो पानी, हाँ पानी से कहता है, पानी का बताता है कि वो पानी उस पत्थर से नहीं लड़ रहा है, कुछ पानी क्या करता है, वो बीच में पत्थर आ गया उससे लड़ो ऐसा नहीं, बाजू से अपनी राह निकाल लेके चला जाता है, कुछ पानी ऊपर से जा रहा है, कुछ इधर से, कुछ इधर से, अपना मार्ग निकाल लो, उसको कुछ नहीं, वो जैसा खड़ा है खड़ा रहने दो, उसको थोड़ी ना उससे झगड़ना नहीं है तुमसे, तुमको उससे झगड़ोगे तो तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। वो ठीक है खड़ा है खड़ा रहने दो, पानी जैसे बाजू से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, ऊपर से निकल रहा है, तुम भी निकल जाओ। पानी सबसे बड़ा उदाहरण है मोल्डेबल नेचर का, किसमें भी डालो, जग में डालो तो जग का आकार, ग्लास में डालो तो ग्लास का आकार, और कुछ डिजाइन किस में डालो तो उसका आकार। पानी भाव, ये पानी की बात नहीं है, कल की मुरली, ये पानी की बात नहीं है, जब तक जीना है तब तक ज्ञानमृत पीना है, तो सीखना है पानी से भी। जब भी पानी को देखो निखिलेश भाई, तो क्या याद करेंगे? मुझे पानी जैसा मोल्डेबल बनना है, लचीला, लचीला, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, वो होनी चाहिए। कुछ अर्जेंट काम करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में कोई आ जाए। आशीष भाई, जितनी पर महान आत्माएं दिखाए, जीसस क्राइस्ट, उसको एक व्यक्ति आया बीच में और कहा कि ओ लॉर्ड, मेरी जो डॉटर है बहुत बीमार है, जल्दी चलो, वो कभी भी जा सकती है, तो वो बिल्कुल उसके साथ जाने को निकलते हैं, और बीच में एक दूसरी महिला आ जाती है, वो कहती है पहले मुझे ठीक करो। वो कहती है पहले मुझे ठीक करो, उसका वो कपड़े पे पकड़ लेती है, तो रुक के पहले उसको ठीक करते है। हाँ उसको पता है अर्जेंट है, वो भी जाना है, पर वो वहां भी रुकता है। अपने आप को थोड़ा ये मतलब क्रिश्चियनिटी में ये उसमें दिखाते हैं कि जीसस क्राइस्ट का नेचर कैसा फ्लेक्सिबल था। कंपनीज, कॉरपोरेट कंपनीज, वहां पर भी हर चीज में, जहां पर एकदम ऐसे ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, ऐसे तन के जो खड़े रहते हैं उनको बहुत मुश्किल आती है। समय अनुसार नियमों को वैसे तो पक्का रहना है, परंतु अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो जैसे कोई मतलब कोई तीन बजे रोज उठता है, अभी कोई कोई सोया ही होगा 12 बजे। ये अच्छी बात है कि वो फिर भी 3 बजे ही उठे, परंतु फिर उसको ये भी पता है कि दिन भर उसको कहीं रेस्ट नहीं मिल रहा है, मिलने वाला है, तो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है अपनी लाइफस्टाइल या अपना जो कुछ तो मोल्ड करना पड़ेगा, या किसी ऐसे ऐसे लोगों के साथ जाना है कि जहां पर उनका जिनका नेचर थोड़ा सा इगोइस्टिक है, अहंकारी है, वहां पर अगर हम उनकी हर बात से टकराए, उनकी हर बात को हम सामना करें उनकी, तो वहां पे झगड़ा ही झगड़ा होगा। तो स्वयं को मोल्ड करना, सहन करना, ये सहन करना जो है वो महान बनना है, और कभी कभी स्वीकार भी कर लेना, लोक संग्रह सेवा अर्थ हमने स्वीकार किया, बहुत ऊंची और बड़ी बात है। कोई प्रश्न? कब तक सहन करेंगे, कब तक दबेंगे? एक सबसे अच्छी बात कह दी बाबा ने, सेवा अर्थ लोक संग्रह अर्थ कर रहा हूं, और भगवान के लोग कुछ भी सोचे, उनके सोचने से क्या होता है? कितना अच्छा कह दिया, दुनिया वालों के सोचने से होता क्या है? बाप के लिस्ट में तुम्हारा नाम आगे होगा, मैं ये सहन कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं। तुम्हें सहन करना है 1995 अव्यक्त मुरली, क्यों? ये बाप की आज्ञा है। सहन करने के फायदे बहुत सारे, ये करो वो करो, परंतु सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, वो सब भूलो, फायदे है या नुकसान है जो है वो सब एक तरफ, ये मैं तुमसे कह रहा हूं, दिस इज माय ऑर्डर, उसका ऑर्डर फॉलो करने के लिए सहन कर रहे। इसके लिए नहीं कि हम कोई, हम बोल नहीं सकते, हम कम शक्तिशाली है, हम कोई हम कोई मजा नहीं चका सकते उसको, ऐसी थोड़ी ना है, या हमारी कोई ज्यादा इधर पावर नहीं है, या हमारी पहचान कम है, या हम थोड़ा कम जानते हैं दूसरों को, हमारी भी बहुत जड़े गहरी है, हम भी बहुत कुछ है इधर, उसके लिए नहीं। क्यों सहन कर रहे हैं हम? उसने कहा है इसलिए, उससे प्यार है, उसके प्यार के लिए सहन कर रहे, उसका आदेश है इसके लिए सहन कर रहे, सेवा के लिए सहन कर रहे, इस संगठन के लिए सहन कर रहे, ताकि इस संगठन में एकरसता, समरसता इस संगठन में रहे, इसलिए सहन कर रहे। इस संगठन की वो मधुरिमा, वो माधुर्य, वो कहीं गुम न हो जाए, इसलिए कर रहे। ऐसा संकल्प होंगे तो ही सहन कर सकता है व्यक्ति, नहीं तो सहन नहीं कर सकता। क्यों सहन करेगा? दुनिया में कोई सहन करता है क्या? एक ने कुछ कहा तो दूसरा तो बहुत उससे ज्यादा कुछ कह देता है, क्योंकि हमें एकता यहां रखनी है इस संगठन में, इसलिए। तो संगठन के लिए, सेवा के लिए, बाप का आदेश है इसलिए, महान बनने के लिए, और एक लालच भी है, आएगा आएगा एक दिन तो आएगा कोई पाओ दबाने वाला। ओम शांति।